तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या मेहर मुकर्रर हो। ये अब चार मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, कभी सिर्फ निकाह होता है, कभी रुख्सती भी हो जाती है और कभी दूसरी सूरत है। तो अगर इसमें तलाक हो जाए या शौहर फौत हो जाए तो क्या किया जाएगा? फरमाए तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या मेहर मुकर्रर हो। इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे, ये हक है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दे दी हो लेकिन मेहर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत में निस मेहर देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और मेहर ना ले, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक्द निकाह है नरमी से काम ले और पूरा मेहर दे दे, और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज्यादा मुनासिबत रखता है। आपस के मामलात में फियाजी को ना भूलो। शादी अच्छे दिनों में थी तो तोहफे देते थे, शादी की रात तुमने मुंह दिखाई का तोहफा दिया, अब हालात बिगड़ गए हैं तो कहा वो पिछली बातों को भूलो नहीं। ये तुम्हारे बच्चों की माँ भी हो सकती है, ये वही औरत है जिसके साथ तुमने इतने साल गुजारे। हमारे कल्चर में अमूमन क्या होता है कि तलाक के बाद बातों का एक इतना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दो लोगों की तलाक नहीं होती, वो दो खानदानों की तलाक होती है, और बाद में सगे भाई बहन रिश्ता टूटने की वजह से बच्चों का आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं रहते। इस्लाम हमें इन सब चीजों से रोकता है। फरमाए तुम्हारे अमाल को तो अल्लाह ताला खूब देख रहा है। अब जब ऐसे मामले आते हैं ना तो नमाजें बड़ी मुतासिर होती हैं, इसीलिए फरमाए हाफिज अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वकूमु लिल्लाहि कानितीन। अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर उस नमाज की जो कि सारी नमाजों के बीच में आती है यानी सलातुल असर, उसकी अहमियत है। हदीस में आता है कि जिसकी नमाज असर जाया होगी गोया कि उसका घर माल बच्चे सब तबाह हो गए। एक बुजुर्ग की बच्ची का इंतकाल हुआ तो लोग उनके पास पुरसे के लिए आए, कहने लगे आज मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया, तुम सब अफसोस का नाम करने आ गए और मेरी फलां दिन असर की नमाज कजा हो गई थी, तुम में से कोई मुझसे ताजियत करने नहीं आया। आज आप सोचिए अल्लाह सबको महफूज रखे बच्चों की मौत से और शौहरों की मौत से, लेकिन आप सोचिए कि एक मौत हमारा कितना सुख चैन बर्बाद करती है और कितनी नमाजें हमारी जाया होती हैं। और असर की नमाज वो है कि जो अक्सर बाजारों की जीनत बनती है, और इस वक्त इंसान कहते हैं और भी कर लो, दिन खत्म हो रहा है, अभी शाम हो जाएगी, फिर ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, और बाद में पता चला घर आए तो मगरिब भी कजा हो गई। अल्लाह ताला हमें ऐसी शॉपिंग से बचाए और नमाजों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे गुलाम फरमा बरदार खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत हो तो फिर पैदल हो या सवार हो, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब अमन मुयस्सर आ जाए तो अल्लाह को इस तरीके से याद करो जिसने तुमको सिखाया जिससे पहले तुम ना वाकिफ थे। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हो, इनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाएं कि एक साल तक इनको ना नफका दिया जाए। यह आयत अब मनसूख है, इससे खूबसूरत आयत आ गई। पहले औरत की इद्दत 1 साल की होती थी, औरत को इतना ज्यादा जुल्म करते थे ये लोग, गंदा रखते, खराब रखते और नहाने ना देते, कपड़े ना बदलती। फिर जब औरत पाक होती इद्दत से तो उस जानवर को लाकर, एक परिंदा लाकर उसके जिस्म से रगड़ते। इतनी मुतफन और बदबूदार वो औरत हो चुकी होती थी कि वो परिंदा उसकी भूख से मर जाता। फिर कहते इद्दत से निकली, फिर जानवरों की मेघनी अपने सर के ऊपर से यूं गुजारती। यानी इस तरह के आपको बहुत सारे मुशरिकाना चीजें आज भी दिखेंगी। इस्लाम ने इन सब को छोड़कर क्या कहा, पीछे पड़ चुके हैं 4 महीने 10 दिन। कितनी इज्जत है बेवा की हमारे माशरे में, लेकिन इस्लाम से पहले क्या था कि 1 साल तक औरत को घर में रखना की हुक्म था। फरमाए कि 1 साल तक इसको ना नफका दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाए, फिर अगर वो खुद निकल जाए और अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करें, इसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं। अल्लाह ताला सब पर गालिब और इक्तदार रखने वाला है और हकीम और दाना है। इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो इन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ ना कुछ देकर रुख्सत किया जाए, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। इसी तरह अल्लाह ताला अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। आपको हैरत हो रही है कि इतनी डिटेल से तो नमाज का तरीका नहीं है कुरान में, इतनी डिटेल से तो हज का तरीका नहीं, जितनी डिटेल से आप देखिए कि तलाक और इद्दत का यहाँ पे ये मौजू पूरा होता है। और आखिरी लफ्ज क्या कह दिया, लअल्लकुम तअक्किलून, उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। इससे क्या पता चला कि फैमिली सेटअप को भी इस्लाम के मुताबिक करना पड़ेगा। किसी सोसाइटी में इस्लाम कब आएगा, जब किसी घर में इस्लाम आएगा। आप जितनी सिस्टर्स यहाँ बैठी हैं माशाल्लाह, हर एक घर एक यूनिट है। हम सब के यूनिट जब इस्लाम के मुताबिक होंगे तो हमारे इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी कि वो इस्लाम को नाफिज करे। तो इस्लाम का आगाज घर से होता है, इसलिए घरों के नक्शे इंसान को इस्लाम के मुताबिक बनाने, ताकि पूरी दुनिया में ये छोटी छोटी चीजें बड़ी होती जाएं। जैसे वो जूम इन और जूम आउट है ना, उसको जहन में लाइए। आपका घर एक छोटी सी चीज है, फिर दूसरे का घर, फिर तीसरे का। पहले एक घर में इस्लाम आएगा, फिर गली में आएगा, फिर गली से मोहल्ले में, मोहल्ले से शहर, शहर से मुल्क में, और जब मुल्क में आ गया तो उस मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों से इंटरेक्शन करेंगे। तो आप देखिए, चंद सालों की बात है, इस्लाम पूरी दुनिया पे आएगा। उम्मते मुस्लिमा को ये काम करना पड़ेगा। इतना आसान, इसमें एक हथियार नहीं उठेगा, एक गोली नहीं चलेगी, एक ये सब वेपन्स खत्म हो जाएंगे अगर इस्लाम आएगा। मैं एक जुमला बड़े शौर से बोलने लगी हूँ, जिस जगह तक भी आप इसको पेश करें कर दें, अगर उम्मते मुस्लिमा उम्मते वसत का किरदार अदा कर दे, तो एक इंडस्ट्री तो पूरी दुनिया से बंद हो जाएगी, खत्म होगी, और वो वेपन्स की इंडस्ट्री है। फिर हथियार नहीं उठेंगे, फिर औरतें अपने अखलाक से, मर्द अपने घर से, अपने सोशल एक्शन से लोगों को इस्लाम का हुसन दिखाएंगे। साथ ही साथ हम कलम को आम करेंगे, हम इल्मी तालीम को आम करेंगे, हम कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे, पूरी दुनिया इतने प्यारे तरीके से, मुनज्जम तरीके से मुसलमान हो जाएगी। इसकी गवाही अल्लाह के नबी की जिंदगी से देख लीजिए। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, कैपिटल ऑफ द कुफर, मुशरिकों का गढ़ था मक्का। एक गोली नहीं चली, एक तीर नहीं उठा, एक तलवार नहीं उठी। इजाजत अल्लाह ने दे दी थी कि चंद घड़ियों के लिए अगर मक्का में अपने हथियार उठा लिए, इट्स एग्जेम्प्टेड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चंद लोग जो वाकई इस्लाम के लिए रिबेलियस थे और जिन्होंने बहुत ज्यादा की, उनके सिवा बाकी सबको माफ कर दिया। घरों में चले जाओ माफ, दरवाजे बंद कर लो माफ, हरम में चले जाओ माफ, अबू सुफियान के घर में चले जाओ माफ। क्यों? इस्लाम अमन सिखाता है। हिरकल जो उस दौर की सुपर पावर थी, उसको अल्लाह के नबी ने जब मजा चखाना चाहा, एक गोली चलने की तो बात छोड़िए, कुछ हुआ ही नहीं। आज जो दुनिया में बारूद और असला इतना आम है, आए दिन खबरें जो हैं वो देखते हैं और अखबारें काली हुई होती हैं और स्क्रीनें लाल हुई हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि मैंने और आपने इस्लाम का काम करना छोड़ा हुआ। मुझे तो दिन ब दिन इतना एहसास इस चीज़ का होता है कि हम अपने आप को कैसे माफ करें। हम किस दुनिया में खो गए? हमारे पास हीरे थे, हमने लोगों को देने छोड़ दिए। हमारे पास इतना प्यारा कल्चर है, ये सब पढ़ाकर मेरा फिर दिल इस तरह से भर जाता है कि अल्लाह ताला, आपने तो इतना प्यारा सेटअप दे दिया और हमने सिर्फ इसलिए नहीं इसको माना कि हमने इस कुरान को समझ के नहीं पढ़ा। सिर्फ इतनी वजह, हमने इसको बरकत की किताब बनाया, हमने इसको वजीफों की किताब बनाया, लेकिन इस किताब को हिदायत की किताब बना के पढ़ना मुश्किल है। इसीलिए लोगों को ये मुश्किल लगता है, वो कहते हैं नहीं, हम इतना नहीं बैठ सकते, हम घर से नहीं निकल सकते, हम घर बैठ के वजीफा कर लेंगे, हम 5 पारे पढ़ लेंगे, तो अल्लाह ताला ये जो हुक्म दे रहे हैं कि लअल्लकुम तअक्किलून, इस पे अमल कब होगा? अकल का भी इस्तेमाल करेंगे, समझ बूझ का भी इस्तेमाल करेंगे, जब इसको समझेंगे तो इस मैसेज को आम करने की जरूरत है कि घर में बैठकर 5 पारे पढ़ने की बजाय एक दफा मिलकर इस कुरान को सुन भी लो, पढ़ भी लो, समझ भी लो, ताकि तुम्हारी अंदर के सवालों का जवाब मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, सुभानकल्लाहुम्मा वा बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।